नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन सेवा साधना पर बात करने वाले हैं। ये उनके ज्ञान, स्वास्थ्य और लोक कल्याण पर दिए गए विचारों का एक अहम हिस्सा है
जी।
और हमारा मकसद ये समझना है कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार साधना, शिक्षण और सेवा ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं और क्यों वो मानते थे कि सिर्फ ज्ञान काफी नहीं, उसके साथ कर्म, खासकर सेवा इतनी जरूरी क्यों है। तो देखेंगे कि भाई किस तरह की सेवा को वो सबसे ऊंचा मानते थे और क्यों।
बिल्कुल।
तो चलिए इस विचार को जरा खोलते हैं। पूज्य गुरुदेव बताते थे कि उनके जो शिविर होते थे उनमें सिर्फ साधना नहीं, साथ साथ शिक्षण भी होता था।
हाँ।
जैसे अपनी बात कहना सीखना, मतलब वाणी को मुखर करना, प्रज्ञा पुराण कथा कहना, या फिर वो स्लाइड प्रोजेक्टर और संगीत से लोगों को जगाने का अभ्यास कराना।
हाँ, और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो शिक्षण और सेवा को साधना से अलग मानते ही नहीं थे, वो तो उसका ही एक हिस्सा था एक तरह से।
अच्छा।
उनका साफ कहना था, भाई देखो, ज्ञान और कर्म जब मिलेंगे तभी असल बात बनेगी, सिर्फ उपदेश देना या सिर्फ जानना वो अधूरा है। इसीलिए तो उनके मिशन में चार चीजें थी, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, और चारों को बराबर का महत्व दिया गया था।
पर जब हम सेवा शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में आता है दान पुण्य, पैसा देना, कपड़े बांटना।
सही बात है।
पूज्य गुरुदेव ने सेवा को कई स्तरों पर देखा था, है ना? इसमें सबसे ऊंचा स्थान उन्होंने किसको दिया?
हाँ बिल्कुल, उन्होंने स्तर बताए थे और सबसे ऊंची सेवा वो मानते थे ज्ञान दान को।
ज्ञान दान? मतलब?
मतलब किसी को सही समझ देना, सही विचार देना। क्योंकि इससे क्या होता है कि व्यक्ति का पूरा जीवन बदल सकता है, उसकी सोच की दिशा ही बदल जाती है, ये एक स्थायी परिवर्तन ला सकता है।
ओके, ज्ञान दान सबसे ऊपर, उसके बाद?
उसके बाद दूसरे स्थान पर है स्वास्थ्य सेवा। किसी का अगर स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो उसको ठीक करने में मदद करना।
ठीक है,
लेकिन यहाँ भी उनका नजरिया सिर्फ शारीरिक मदद वाला नहीं था, उसमें भी एक गहराई थी।
अच्छा, क्या मतलब, क्या गहरा पहलू था इसमें?
देखिए, स्वास्थ्य सेवा के तहत वो जैसे जड़ी बूटी चिकित्सा सिखाने की बात करते थे या आसन प्राणायाम सिखाने की, तो मकसद सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं था, असली मकसद था कि इलाज के बहाने उस व्यक्ति के संपर्क में आया जाए और उसे संयम का महत्व सिखाया जाए।
ओ, संयम का महत्व।
हाँ, क्योंकि वो मानते थे कि स्थायी स्वास्थ्य जो है वो दवाओं से उतना नहीं आता जितना संयमित जीवन शैली से आता है। और इस तरह की सेवा से आप देखिए सहानुभूति भी मिलती है, जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि करते थे या ईसाई मिशनरी करते आए हैं। जब आपको सहानुभूति मिलती है ना, तो लोग आपकी बात सुनने को, आपके विचार अपनाने को ज्यादा तैयार हो जाते हैं।
ये बात तो है। अच्छा, और फिर तीसरे स्थान पर वो सेवा जो आजकल शायद सबसे ज्यादा दिखती है, पैसे से मदद, चीजों से मदद, प्याऊ लगाना, धर्मशाला खोलना, खाना खिलाना।
हाँ, वो तीसरे स्थान पर। और देखिए, पूज्य गुरुदेव उसकी निंदा बिल्कुल नहीं करते थे, वो कहते थे ये भी उपयोगी है, जरूरत है इसकी।
हाँ,
पर वो साथ में ये भी साफ करते थे कि भाई ये मुख्य रूप से शरीर की जरूरतें पूरी करती है, आत्मा या मन को ऊपर उठाने में इसका रोल मतलब सीमित है। धन से तन को आराम मिल सकता है, पर जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणा वो शायद इससे उतनी नहीं मिलती।
तो ये जो ज्ञान दान पर जोर है और स्वास्थ्य सेवा के जरिए संयम सिखाने पर जोर है, इन सबका असली मकसद क्या था फिर? ये सारी कड़ियां कहां जाके जुड़ती हैं?
ये सब जुड़ता है पूज्य गुरुदेव के जो उनका अंतिम लक्ष्य था, जन जागरण और विचार क्रांति।
विचार क्रांति।
हाँ, उनका मानना था कि आज समाज में जो इतनी समस्याएं हैं उनकी जड़ में क्या है, इंसान का भटकाव और उल्टा चिंतन, मतलब सोचने का गलत तरीका।
राइट।
इसी गलत सोच ने स्वास्थ्य बिगाड़ा, परिवार बिगाड़े, समाज में गड़बड़ी पैदा की, सब गड़बड़ा दिया एक तरह से।
इसीलिए शायद वो वाणी के सही उपयोग पर इतना बल देते थे, प्रवचन, कथा कहना, संगीत का उपयोग, और यहाँ तक कि दृश्य माध्यम जैसे स्लाइड या चित्र प्रदर्शनी।
बिल्कुल, वो इन्हें बहुत शक्तिशाली हथियार मानते थे। किस चीज के लिए? लोगों के दिमाग की सफाई करने के लिए, मतलब एक तरह की ब्रेन वॉशिंग सही दिशा में।
हाँ।
और विचारों का परिशोधन करने के लिए, जैसे हम सुनते हैं ना कि नारद जी ने अपनी वाणी के प्रभाव से वाल्मीकि को बदल दिया।
हाँ।
प्रहलाद, ध्रुव, कितने लोगों का जीवन बदल दिया।
सही बात है।
और सबसे अहम बात ये समझनी है कि ये जो सारा शिक्षण था, ये जो सेवा थी, ये किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं थी, या भाई नाम कमाने के लिए या मालदार बनने के लिए नहीं,
नहीं।
ये समाज की जरूरत पूरी करने के लिए थी। लोगों की सोच बदलने के लिए, क्योंकि उनका मूल सिद्धांत था मनस्थिति बदलेगी तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। वो एक उदाहरण देते थे मेहंदी पीसने वाले का,
हाँ।
कि जो दूसरों के हाथ लाल करने के लिए मेहंदी पीसता है ना,
हाँ।
पीसते पीसते उसके अपने हाथ भी लाल हो जाते हैं।
मतलब जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला सोचते हैं, लोक मंगल के लिए काम करते हैं, तो आपका अपना कल्याण तो उसमें अपने आप शामिल हो ही जाता है।
बिल्कुल।
तो मतलब सार ये निकलता है कि पूज्य गुरुदेव के लिए सेवा कोई अलग से करने वाला काम, कोई दान पुण्य का कर्मकांड मात्र नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि वो हमारी अपनी साधना का, हमारे अपने आध्यात्मिक विकास का ही एक अटूट हिस्सा है। और सच्ची सेवाएं वही है जो लोगों की सोच पर असर डाले, उन्हें ज्ञान की ओर, बेहतर स्वास्थ्य की ओर और संयम की ओर ले जाए। इसी से व्यक्ति का भी भला होगा और समाज का भी।
बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही गहरा विचार है और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, है ना?
किस तरह से?
कि अगर आज भी हमारी बहुत सारी समस्याओं की जड़, जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा, हमारी गलत सोच या उल्टा चिंतन ही है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी बातचीत में, अपने कामों से इस विचार क्रांति में अपना छोटा सा ही सही पर योगदान कैसे दे सकते हैं?
हाँ, ये सोचने वाली बात है।
ऐसी हम सिर्फ वो बाहरी भौतिक मदद से आगे बढ़कर लोगों की सोच को, उनके नजरिए को सही दिशा देने में कुछ मदद कर सकते हैं। ये सवाल शायद हम सबके लिए सोचने का